प्रिय श्रोताओ नमस्कार। हमेशा की तरह आपका मनपसंद बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी पहला थिस्सलुनीकियों नामक पत्रिका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ हम विश्वास करते हैं कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस बाइबल अध्ययन को सुने और जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रस्तुत है आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं जिसे पौलुस ने थिस्सलुनीके के कलीसिया को लिखा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और चौथे अध्याय के 4 पद से अध्ययन आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि प्रत्येक जन जब आपके वचन को सुने तो वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, हर एक प्रकार की बुराइयों से उन्हें छुटकारा प्रदान करें, उनके जीवन के तकलीफों से उन्हें आज़ादी दें और इतना ही नहीं उनके जीवन में आप कार्य करें और उन्हें शांति प्रदान करें। आज के वचन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि हम व्यवहारिक पवित्रीकरण को अपनी इस पापी देह के द्वारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे इस पापी देह में रहते हुए हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे परिपूर्ण पवित्रीकरण। यह तब होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाएंगे। उस समय पवित्रता का अवस्थान तथा व्यवहारिकता भी सिद्धता प्राप्त करेंगे। पवित्र किया जाना वास्तविक है, परमेश्वर के लिए अलग किया जाना। जिस पल एक पापी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसी पल वह परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग कर दिया जाता है। यह पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू के संबंध में कहा गया है। परमेश्वर ने पुराने नियम के विश्वासियों को साधारण व्यवहारिक शिक्षाओं के द्वारा महान सैद्धांतिक सत्य सिखाए थे। मिलाप वाले तंबू में पात्र थे और कुछ उपकरण भी थे जो बलि चढ़ाने के काम में लिए जाते थे। जंगल के 40 वर्षीय प्रवास में ये पात्र एवं उपकरण आदि सब टेढ़े मेढ़े हो गए थे और देखने में अच्छे नहीं थे। मेरे विचार में यदि वे घर में होते तो पत्नियां उन्हें कब तक बेचकर नए पात्र ले लेती, परंतु परमेश्वर उन्हें पवित्र कहता है। वे पवित्र इसलिए थे कि वे परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग किए गए थे, यही कारण था कि वे पवित्र कहलाए। ऐसा ही मनुष्यों के साथ है, प्रभु यीशु के संपर्क में आते ही उसका उद्धार होता है, वह मुक्ति पाकर प्रभु यीशु का हो जाता है। पौलुस कहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, जी हाँ, आपको परमेश्वर के पवित्र उद्देश्य के निमित्त अलग कर दिया गया है। परमेश्वर की प्रत्येक संतान न केवल प्रचारक या परमेश्वर के दास या सेवक, प्रत्येक विश्वासी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग किए गए हैं। अर्थात वे विचार से बचे रहो। आप यह न सोचें कि केवल थिस्सलुनीके के विश्वासी वे विचार में फंसे थे या केवल रोमी युग में ही प्रतिमा की आराधना की जाती थी या व्यभिचार था। आज भी शैतान की उपासना में वृद्धि हो रही है। ऐसी आराधना विधि में हर प्रकार के तंत्र मंत्र संबंधित वस्त्र और अनुष्ठान होते हैं। ज्योतिष विज्ञान में मनुष्य ही मनुष्य का भविष्य बताता है। इनमें व्यभिचार होता है। आज की सबसे बड़ी त्रासदी है यह सुनना कि कोई मसीही सेवक व्यभिचार में पड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से ऐसे सेवकों का पक्ष लेने वाली कलीसियाएं भी जीवित हैं। हमें तो परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग किया जाना है। पौलुस कहता है कि आप पाप में लिप्त नहीं हो सकते और परमेश्वर के भी काम को करते रहें। कोई भी मनुष्य पाप में रहते हुए प्रचारक या गायक या संडे स्कूल का शिक्षक या कलीसिया का पदाधिकारी नहीं हो सकता है। आप कुछ भी हो, ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर के काम को क्षतिग्रस्त कर देंगे। मेरे प्रियो, क्या विश्वासी पवित्रता का प्रयास करे? मेरे विचार में उसे ऐसा करना चाहिए, परंतु हमें सदा स्मरण रखना है कि केवल मसीह यीशु में ही हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य होंगे। पौलुस कहता है कि हम पवित्र किए गए हैं और इस ऊंचे स्तर पर लाए गए हैं, अर्थात परमेश्वर के लिए पृथक किए गए हैं। तो अब क्या है? आइए हम पढ़ें पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:4-5 पद में इस प्रकार से लिखा है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। ध्यान दीजिए, थिस्सलुनीके के विश्वासी चारों ओर से अन्य जातियों से घिरे हुए थे जो अलग अलग प्रकार के मान्यताओं को मानते थे और योनाचार को अलग अलग नहीं मानते थे। योनाचार यूनानियों का एक धर्म था। आप कुरिंथ नगर में यह सब कुछ देख सकते हैं, परंतु आपको कुरिंथ नगर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप थिस्सलुनीके नगर में भी यही सब कुछ देख सकते हैं। पौलुस कहता है कि हमारा जीवन सुसमाचार को प्रतिष्ठित करता हुआ होना चाहिए। आज के विश्वासियों का निरंकुश जीवन सुसमाचार की प्रतिष्ठा को गिराता है। ऐसे मनुष्य न तो परमेश्वर के लिए जीते हैं और न ही उसकी सेवा करते हैं। आप परमेश्वर की सेवा में पाप का जीवन नहीं जी सकते। परमेश्वर को यह ग्रहण योग्य नहीं है। मेरे मित्रों, आप ध्यान से सुने, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। आज की अनैतिकता दांतों तले उंगली दबाने योग्य है। एक बहुत ही अच्छे मसीही अगुआ ने मुझे बताया कि जिस कॉलेज में वह बाइबल अध्ययन करवाने के लिए जाता है वहां के लड़कों का छात्रावास सदोम है और लड़कियों का अमोरा है। ये युवक युवतियां योनाचार के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, परंतु प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानते। परमेश्वर कहता है कि हमारी देह विवाहित संबंधों के लिए शुद्ध रखना है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। विवाहित जीवन में कष्टों के अनेक कारण दिए गए हैं, परंतु सच तो यह है कि दंपत्ति परमेश्वर के उपयोग हेतु अलग नहीं किए गए हैं और न ही एक दूसरे के प्रति प्रेम में विश्वास योग्य हैं। जब एक व्यक्ति अपने देह को विवाह के लिए सुरक्षित रखता है और अपने जीवन साथी का विश्वास योग्य होता है, तो वह अपना पात्र पवित्रता और आदर के लिए रखता है। परमेश्वर के प्रत्येक संतान का यही व्यवहार होना चाहिए। मेरा विश्वास करें, पौलुस खरी बात भी करना जानता है और करता है। हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:6 में पढ़ते हैं कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। ध्यान दीजिए, कोई अपने भाई को न ठगे। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपको सत्यनिष्ठ होना है, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। मैं अनेकों वर्ष विश्वासी रहा हूं, एक सेवक के रूप में रहा हूं, और इस सिद्धांत को विश्वासियों के जीवन में कार्य करते हुए देखता हूं। मैंने कुछ विश्वासियों को देखा है जो अन्यों के साथ व्यवहार करने में अनिष्ट रहे हैं, परंतु स्मरण रखें, प्रभु पलटा लेने वाला है, वह उनका न्याय करता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर की संतान पाप में नहीं रह सकती है। उड़ाव पुत्र कुछ समय सुअर के बाड़े में रहेगा, परंतु वहां वह हमेशा नहीं बसा रहेगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:8 में लिखा है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। परमेश्वर की संतान में पवित्र आत्मा अंतर्वास करता है। वह पाप में सदा वास नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है। एक समय वह अवश्य पवित्रता के लिए ललकेगा। पवित्र आत्मा एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। पौलुस ने गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को लिखा कि परमेश्वर की संतान देहिक पाप में भागीदार नहीं हो सकती है। उसके जीवन से तो पाप की अपेक्षा पवित्र आत्मा का फल प्रकट होना है। रोमियो की पत्री 8:3 में पौलुस स्पष्ट कहता है, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। क्यों? क्या व्यवस्था उचित नहीं है? जी नहीं, व्यवस्था अनुचित नहीं है। 10 आज्ञाएं अनुचित नहीं है। समस्या व्यवस्था के साथ नहीं, मनुष्य के साथ है। मनुष्य 10 आज्ञाओं के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है, न ही वह नए नियम की आज्ञाओं के अनुसार जी सकता है। यह विश्वासी में अंतर्वासी पवित्र आत्मा है जो उसे परमेश्वर के लिए जीने योग्य बनाता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को पवित्र आत्मा दिया है। उसे उद्धार के बाद खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह उद्धार पाते ही विश्वासी के जीवन में प्रवेश कर जाता है। प्रेरितों के काम 19 में पौलुस ने इफिसुस आकर देखा कि वहां दावा करने वाले विश्वासी थे, परंतु उनमें पवित्र आत्मा का अंतर्वास नहीं था। पौलुस ने पूछा कि क्या उन्होंने उद्धार पाने पर पवित्र आत्मा पाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था। उन्होंने केवल यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में ही सुना था। अतः पौलुस ने उन्हें सुसमाचार सुनाया जिससे उनका उद्धार हुआ और पवित्र आत्मा ने उनमें प्रवेश किया। आप मन फिराकर प्रभु यीशु की ओर फिरते हैं, उसी पल पवित्र आत्मा आप में प्रवेश करता है और उससे आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त होता है और वह विश्वासियों की देह में जोड़ा जाता है कि सक्रिय हो जाए। उसके बाद विश्वासी में अनेक बार आत्मा से भरना होता है। मेरे विचार में हमें लगातार आत्मा से भरते रहना है। यह केवल पवित्र आत्मा का भरना ही है जो हमें पवित्र जीवन जीने योग्य बनाता है। पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र 4 अध्याय उसके 9 पद में आगे पढ़ते हैं, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। प्रेम मुख्य विषय है। पौलुस का यह कथन आश्चर्यजनक है। विश्वासी में भाई के लिए प्रेम होना चाहिए। यह परमेश्वर द्वारा व्यक्त अलौकिक प्रेम है। आत्मा का फल प्रेम है। यह प्रेम शब्दों का नहीं या भाव वचन नहीं है, यह प्रेम व्यवहारिक है। ऐसा प्रेम विश्वासियों के मन में केवल पवित्र आत्मा द्वारा ही उत्पन्न होता है। मेरे मित्रों ध्यान दें, पवित्र आत्मा की चर्चा करते ही पौलुस भाईचारे के प्रेम का उल्लेख करता है। किंतु भाईचारे की प्रीति के लिए आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। मेरा यह मानना है कि प्रेम परमेश्वर की संतान की पहचान का चिन्ह है। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि उसके कॉलेज के समय में उसका एक मित्र था जो दोनों आपस में किसी बात के लिए झगड़ते थे। बाद में पता चला कि वे दोनों एक ही लड़की से प्रेम करते हैं और दोनों उसे घुमाने के लिए ले जाने का यत्न करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों में झगड़ा हुआ और तब उसमें से एक ने बातें सुनाना आरंभ कर दिया। उसकी बातें प्रशंसात्मक नहीं थी। तब दूसरे ने खरी खोटी सुना दी जो उसकी सराहना में एक शब्द भी नहीं थी। उसी पल उसमें से एक के मन में एक विचार उभरा, तू परमेश्वर की संतान होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, परमेश्वर की संतान का प्रमाण है कि वह अपने भाई से प्रेम करे। यूहन्ना इसी बात पर बल देता है और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में भी यही सिखाया गया है कि हमें अपने भाई से प्रेम करना है। चाहे तू सबसे अधिक घृणित एवं अप्रिय हो, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। इस वचन को स्मरण करते ही एक ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वह उसे देख करके आश्चर्य करने लगा और हंसने लगा। तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तू मुझसे कहीं अधिक बुरा है। मेरे प्रियो, आज वह भी हमारे समान एक प्रभु का दास है। हमें कभी कभी एक दूसरे से भेंट करने का भी अवसर मिलना चाहिए और इस अवसर में ऐसे प्रेम के बारे में चर्चा करना चाहिए। वह अब भी वैसा ही है, परंतु उसका मित्र उससे आज भी प्रेम करता है क्योंकि वह परमेश्वर की संतान है। मेरे विचार में वह भी अपने दूसरे मित्र से प्रेम करता है। यह एक प्रमाण है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम के चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो, परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। भाई के लिए मन में प्रेम उन्नति और विकास का क्षेत्र है। स्पष्ट कहूं, कुछ पवित्र जन देखने में सुंदर नहीं है। किसी ने कहा, पवित्र जनों के साथ प्रेम में ऊपर वास करना वह तो महिमा है, परंतु यहां पवित्र जनों के साथ रहना एक अलग कहानी है। मेरे मित्रों, थिस्सलुनीकियों के विश्वासी आपस में प्रेम अवश्य रखते थे, परंतु उनका प्रेम पराकाष्ठा प्राप्त नहीं कर चुका था। वे प्रेम में सिद्ध नहीं थे। उनमें सुधार की अब भी आवश्यकता थी। वहां पवित्र जनों में व्यक्तित्व में टकराव था। ऐसे मनुष्यों के लिए उचित है कि वे अधिक साथ न रहें, न ही एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख कर चलें। इसका अर्थ यह नहीं कि हम घृणा करें। हम उन्हें परमेश्वर की संतान होने के कारण प्रेम करें। मुझे एक प्रचारक की विधियां घृणित लगती हैं, परंतु मैं उससे प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु की चर्चा करने में उसके तुल्य अन्य कोई नहीं और इसी कारण मैं उससे प्रेम करता हूँ। सच्ची परख भाईचारे का प्रेम है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आप सच्चे विश्वासी हैं या नहीं, तो यही एक स्थान है। क्या आप अपने भाई से प्रेम करते हैं? जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या आप अपने भाई से प्रेम करते हैं? पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:11 में लिखा है, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। चुपचाप रहने, यह मसीही विश्वासियों के लिए एक अति रोचक आज्ञा है। आज बोलने पर अनेक अध्ययन करवाए जाते हैं, परंतु सेमिनार में भाषण देना सिखाया जाता है। मेरे विचार में उनकी चुप रहना सिखाने की भी कक्षाएं होना चाहिए। बहुत से पवित्र जनों को ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। एक स्त्री अन्य भाषा बोलने की सभा में गई। उनके अगुए ने सोचा कि वह अन्य भाषा बोलने में रुचि रखती है। उसने पूछा, बहन क्या आप अन्य भाषा बोलना चाहती हैं? उसने कहा, जी नहीं, मैं 40 फुट कम होना चाहती हूँ। हमें चुपचाप रहने का अध्ययन करना चाहिए। यह एक आज्ञा है। अपना काम काज करने, यह एक और भी अच्छी आज्ञा है। इसका अर्थ है अपना काम करो, दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करें। विश्वासियों के लिए यह एक अच्छा परामर्श है, अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। मैं तो यह मानता हूं कि प्रत्येक विश्वासी के पास कुछ करने के लिए होना चाहिए कि वह परमेश्वर के लिए कोई न कोई कार्य करे। यह एक अद्भुत कार्य होगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:12 में लिखा है, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। ध्यान दीजिए, लिखा है बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। यह भी आज पवित्र जनों के लिए एक आवश्यक कार्य है। इससे आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। हमारा आचरण मनुष्यों और परमेश्वर के समक्ष विश्वास योग्य होना चाहिए। मुझे अनेक संस्थानों से पत्र प्राप्त होते हैं जो पैसा एकत्र करने की कुछ ऐसी विधियां काम में ले लेते हैं जो मेरे लिए संदिग्ध हैं। कुछ संस्थाओं में कर्मी बूढ़े लोगों से संपर्क करके उनकी वसीयत संस्था के नाम करवाने का भी यत्न करते हैं। यह एक कारण है कि आपको बूढ़े होने से पूर्व अपनी वसीयत तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बेउसूल मनुष्य हैं जो आपकी संपत्ति को हड़पने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसमें दो राय नहीं है। परमेश्वर की संतान ऐसे काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमें बाहर वालों के समक्ष सत्यनिष्ठा का आचरण रखना है। इसका अर्थ है कि अविश्वासियों के साथ हमारा संपूर्ण व्यवहार ईमानदारी का होना चाहिए। यदि हम ईमानदारी का व्यवहार ना करें तो परमेश्वर हमें दंड देगा। मेरे मित्रों, आज प्रश्न यह है कि क्या हम सचमुच में परमेश्वर की संतान हैं? क्या हम पवित्रता का जीवन जीते हैं? क्या हम ईमानदारी का जीवन जीते हैं? यदि नहीं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे ऊपर है, हमारे सामने है। आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, ईमानदार हों और परमेश्वर के लिए कार्य करें। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
गाएंगे हम यीशु के लिए सदा, मुझको